अगर मैं गुरुजी के लिए 19-20 सुनता अथवा गुरुजी के लिए मेरे मन में 100% श्रद्धा के बजाय कुछ और होता दिखावा, तो मुझे इतना नहीं मिलता जितना औरों को मिला, उतना ही मिल जाता। बस औरों को मिले और वो अपनी ढपली अपना राग बनाने लगे, अपने तक डटे रहे बाबा। चल आखिरी श्वास गुरुजी ने मेरी गोद में लिया और उस समय जो निगाहों से जो कुछ हुआ वहां वाणी नहीं जाती। जो नित्य उनका सेवक था, आखिरी समय देखो गुरु की कैसी कृपा होती। जो मेरे को धकेलना चाहता था वो नित्य का सेवक था, मैं तो अलग जाके गुरु जी आज्ञा किया वहां जाके साधना की, कभी कभी मिलता। जो मेरे को भगाने में लगा, गुरु जी को जाने का समय हुआ तो उसको डबल ने भगा कर ले गया। जो मेरे को भगाने में लगा, जब गुरु जी को दे जाना था तो उसको डबल ने भगा कर ले गया। गुरु जी का कहना नहीं देखता रह जा। कर्मों की गति हम सहते गए थे और वो करता गया था, हम सहते गए सहन करे वो संत, हम सहते गए सहते गए। अब हुआ क्या कि गुरु जी को जब आखिरी यात्रा करनी थी तो तबियत जरा 10-5 मिनट हृदय का दम्मा चल पड़ा। अब उसको लगा डबल आखिरी श्वास और आखिरी आंख बंद करना, गुरु जी और हम ही थे, दूसरा कोई बंदा नहीं। देखो नियति कैसी है, कर्मों की गति कैसी है। जो सहन करता है और ईश्वर के लिए गुरु के पास टिकता है, ईश्वर व्यवस्था कैसे करता है कि उसी समय डबल। बोले यार मैं चाहता, मैं कह जाओ आराम से करो, खूब जाओ। डबल ना आया, धोया फिर आया। बोले साहब मैं क्या हो तो ब्रह्म हो गए आप गए। फिर उसने खेल किया, अपना ऐसे ड्रेस उतारा और बापूजी के जो कपड़े थे वो पहन के उत्तराधिकारी बन गया। मैं क्या बनता रहे तू। मेरा बापूजी जो पहनते थे वही कपड़े उसने बना के ही रखे थे, वो पहना तिलक मिला के वो अपना समझो बापूजी इसी को दे गए, और मेरे को तो लेना भी नहीं था। वो बना वो उसी ताक में था कि अब मेरे को तिलक हो, नहीं गद्दी पे बैठो तो मेरे को तो विरोध करना ही था ही नहीं था, मुझे तो गद्दी चाहिए ही नहीं थी। गद्दी पे भी बैठा और भी जो कुछ उसने अपना करना था बेचारे को करा, लेकिन टिका नहीं। 32 साल पहले चला गया, मेरी उम्र का था, 32 साल पहले चला गया, 30-32। तो उसको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं थी, उसको गद्दी पे बैठने की रुचि थी। अब कहां मेरा ब्रह्म बापूजी और कहां उनकी गद्दी पे बैठने वाले का अधिकार भी तो चाहिए। गुरु की गद्दी कोई साधारण थोड़ी होती, वहां निस्वार्थता चाहिए, निष्कपटता चाहिए, निरहंकारिता चाहिए, निर्दोषता चाहिए, जन्मों का अंत करने वाली अनंत की प्रीति चाहिए, अनंत का माधुरी चाहिए, अनंत का प्रसाद पाकर बुद्धि भगवत प्रसाद जा चाहिए, तब कहीं गुरु की परंपरा का प्रसाद बढ़ता है। उसी प्रसाद से लोगों के कान पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, जीवन पवित्र हो जाता है। अभी आपको कितना फायदा हो रहा है उसका नाप तोल निकालने वाला कोई तराजू पैदा ही नहीं हुआ और पैदा हो भी नहीं सकता। जिसने अच्युत को पाया है, गोविंद को पाया है, अनंत को पाया है, उस महापुरुष के दर्शन से, सत्संग से, सानिध्य से जो लाभ होता है उसका तोल माप हम तुम नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी की तराजू भी अभी तक नहीं कर सकते। ऐसा लाभ मुझे हुआ है ना, और आपको भी हो रहा है। ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा जिसने दीक्षा ली और नियम करता और उसको फायदा ना हुआ। कितने बंदों को कितना कितना फायदा हुआ फिर भी यहां खुटता नहीं। कैसा है अच्युत गोविंद अनंत, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजा। विवेक क्या होता है? सामान्य विवेक तो सबको होता है, ये खाना ये न खाना, ऐसा उठना बैठना। लेकिन यहां विवेक विशेष विवेक, अविनाशी आत्मा है और जगत विनाशी है, ऐसा जिनको विवेक हुआ। चैतन्य आत्मा नित्य है और प्रकृति में परिवर्तन है, ऐसा विवेक जिनको होता है। तो जैसे बाण देखकर कौवा भाग जाता है, ऐसे विवेक देखकर राग द्वेष भय शोक अभिनिवेश ये दुर्गुण भाग जाते हैं। फिर क्रोध करते हुए दिखेंगे लेकिन निमित्त मात्र, राग करते हुए दिखेंगे निमित्त मात्र। राग में सामान्य आदमी रागी हो जाता है, लेकिन वो जिनको आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई वे राग में रागी नहीं होते हैं, व्यवहार में लेपायमान हुई होते हैं और अपने शाश्वत स्वरूप की मधुरता में ज्ञान में जगे रहते हैं। जैसे किसी डाली में फल लगा है, डाली को खींचा, फल बल तोड़ा, फिर डाली छोड़ दी तो अपनी जगह पर, ऐसे ही व्यवहार में आए, व्यवहार सामान्य आदमी के नहीं किया, जो ही उसमें से चित्त शांत हुआ उसी पर ब्रह्म परमात्मा। जैसे किसी के यहां तुम मेहमान होकर गए और कीमती अंगूठी तुम बाथरूम में भूल के आए, अब तुमको याद आया अब जाना है लेकिन बाजार से ये काम कर, तो काम करते करते अनायास वो कीमती अंगूठी आपको याद आ रही है, कहीं हट न जाए, कोई ले न जाए। ये अंगूठी है 5-25 हजार की, लाख 2 लाख, उसकी स्मृति अपने आप होती है। इससे भी महान परमात्मा तत्व है, उसकी स्मृति उनको सहज में होती रहती, इसलिए वे व्यवहार में होते हुए भी बार बार अपने आत्म स्वभाव में, उनको रटना नहीं पड़ता, खोजना नहीं पड़ता कि परमात्मा कहाँ है, आत्मा कैसा है। गुरु की कृपा से साधन भजन करते हुए सत्संग करते हुए आ गई समझ में बात, बैठ गई अंतःकरण में, बस हो गया, फिर उसी में रमण करते हैं। उठत बैठत ओई उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने। ऐसे महापुरुष आत्म में होते तो उनके प्रति जो सद्भाव करते उनको भी रस ज्ञान और प्रेरणा मिलती। जैसे हम साधना करते थे तो गुरु जी का चिंतन करते, गुरु जी से बातें करते तो प्रेरणा मिलती थी, बड़ा आनंद रहता था। ऐसे करते करते गुरु का आत्मा अपना आत्मा एकाकार हो जाता है। सो साहेब सद सदा हजूर है, वो हाजरा हजूर है। मंदिर में भावना के लिए मंदिर ठीक है, श्री कृष्ण का, राम जी का, हनुमान जी का ये मंदिर ठीक है, अच्छे है। लेकिन उन मंदिरों में जाने का फल है कि हृदय मंदिर में जाने वाला सत्संग मिल जाए, और हृदय मंदिर में आए तो फिर राग द्वेष चिंता भय शोक अभिनिवेश, जैसे तीर को या पत्थर को देख के कौवा भाग जाता है, ऐसे विवेक के आगे ये सब भाग जाते हैं। वे स्वयं भी आत्म शांति में रहते हैं और उनके निकट जो जाते हैं उनको भी ज्ञान और शांति का दान मिल जाता है। शांति परमात्मा शांति, ऐसा नहीं कि भूख लगी बड़ी अशांति है, खाना मिल गया शांति, धूप है बड़ी अशांति है और छाया मिल गई शांति, ये नहीं। परमात्मा शांति, सुविधा से शांति संसार है, परमात्मा शांति ये साधना का फल है। बड़ी गर्मी हो रही थी, बारिश हो गई, शांति, ये शांति तो आती जाती है। परमात्मा शांति मिली एक बार, फिर उसमें रमण करते बढ़ा सकते हैं, लेकिन जाएगी। एक बार परमात्मा शांति मिली, फिर हजार बार अशांति आए, उसका महत्व टिकेगा नहीं। शांति क्या है? एक बार सूरज को देख लिया, फिर हजार रात्रियां चाहिए, हजार रातियां आई, फिर भी सूरज का ज्ञान नहीं छीन सकती। एक बार पता चल गया हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के सींग नहीं होते, ये पता है। फिर कोई कह दे तुम्हारे सिर पे सींग है, तो आप क्या बोलोगे? बोले देखूंगा। देखेगा काय को? सींग थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं, देखना क्या है? मनुष्य के, आपको कोई कह दे तुम्हारे सिर पर सींग है, तो क्या देखोगे सींग है कि नहीं? अरे बोले चल, अरे तुम सींग वाले प्राणी हो, अभी नहीं है, पहले थे तुम्हारे को सींग, अथवा अभी नहीं है, पहले नहीं थे, बाद में होंगे। न पहले थे, न अभी है, न बाद में रहेंगे। तीनों काल में मनुष्य को सींग नहीं होते, खरगोश को सींग नहीं होते। ये ज्ञान हो गया तो फिर कोई आपको पटाए फुसलाए तो आप उसमें नहीं जा सकते। ऐसे ही आत्मा में दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, भय नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता। तुम आत्मा हो, उसको जानने से मुक्त आत्मा हो जाओ। जन्म मृत्यु होता है अज्ञान से, जन्म मृत्यु होता है संसार को सच्चा मानने से और अपने को न जानने से। अपने को मनुष्य जान लिया तो मैं सिंह वाला हूं, ऐसा कोई मानोगे क्या? ऐसे अपने को आत्मा जान लिया तो फिर मैं जन्मने मरने वाला हूं, ऐसा नहीं मान सकते। जन्म होता है शरीर को मैं माना, संसार को सच्चा माना, निवरे रहे, तब जन्म मरण होता है। आत्मा को मैं जाना, संसार को सपना जाना, चैतन्य को अपना जाना, नित्य है, शुद्ध है, फिर जन्म मरण काय होगा? भोगने की वासना होगी तो जन्म मरण होगा। ऊपर के लोकों में जाएगा, फिर चंद्रमा के किरणों से वस्तु में आएगा, फिर पिता के शरीर के द्वारा माँ के गर्भ में आएगा, फिर नाली में बहेगा। ये सारे दुख उसके सदा के लिए छूट जाते हैं, क्योंकि आत्मा का विवेक हुआ है। आत्म विवेक के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। बोले मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। भगवान से रोटी मांगो, रोटी तो नहीं मांगने वाले कीड़े मकोड़ों को भी देता है भगवान। कीड़े मकोड़े कहाँ प्रार्थना करते? हम जंगल में घूमने जाते हैं, वहां कीड़े के लिए खाने की कोई चीज नहीं दिखती, फिर भी जी रहे, मकोड़े जी रहे। तो आज थोड़ा गायों को खिलाया, फिर मन में हुआ चलो उनके लिए ले जा, तो कीड़ों के मकोड़ों के जहां मिल थे वहां डाला। तो उन्होंने तो मेरे को नहीं बोला कि हमको खाने को दो, अगर हम नहीं भी डालते तो इतने दिन जिंदे थे तो क्या आज मर जाते क्या? ये तो हमारे को स्वाभाविक हुआ चलो ये जाए। भगवान को प्रार्थना करो रोटी के लिए, भगवान को प्रार्थना करो इस चीज के लिए। ये बहुत छोटी स्थिति है, भगवान को प्रार्थना कर रहे कि तुम्हारे में प्रीति हो जाए, तुम्हारे और हमारे बीच की दूरी मिट जाए, हम क्या है ये पता चल जाए, अथवा तुम क्या हो ये पता चल जाए। भगवान को जान लोगे तो अपने को जान लोगे, अपने को ठीक से जान लोगे तो भगवान अनजान नहीं रहेंगे। भगवान से मांगे तो ऐसा मांगे, भगवान से मांगो मैं पास हो जाऊं, मुझे रोटी मिले, मुझे फलाना मिले, मरने के बाद स्वर्ग मिले, तो क्या तुम भगवान से मांगो? सम्राट से चार पैसे मांगना, सम्राट से चना मूंगफली मांगना, ऐसा हुआ? भगवान तो भगवान है, और वो आत्मा होके बैठे कि आप में प्रीति हो जाए, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आपका ही ज्ञान मुझे मिले, आपका प्रेम मिले, आपका प्रेम होगा तो ये भक्ति हो जाएगी, आपका ज्ञान होगा तो ये साक्षात्कार हो जाएगा, आपके लिए कर्म करूंगा तो कर्म योग हो जाएगा, लेकिन आपकी सत्ता लेकर संसार को चाहूंगा तो मैं तो संसारी हो जाऊंगा, दुखी सुखी होते हुए जिंदगी बिता दूंगा, अहंकारी हो जाऊंगा, मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं दुखी, ये भी तो अहंकार है, अहंकार कोई तो होता है, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, हे नाथ मैं तुमको भूलू नहीं। भगवान को नहीं भूलेंगे तो अपने को पापी भी नहीं मानेंगे, अपने को पुण्यात्मा भी नहीं मानेंगे। पाप की एक वृत्ति आई चली गई, पुण्य की वृत्ति आई चली गई, उसको जानने वाले हम हैं, भगवान के प्यारे, भगवान हमारे प्यारे। अपने को ऐसा मानकर किसी कटघरे में नहीं खड़े रहो, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, ये तो मन के भाव है, हम तो कई बदलते रहते हैं। इन सब की बदलाहट को जानने वाला मैं तो परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है, ये हो गया भक्ति। भक्ति में प्रीति थोड़ा सा आएगा, इधर उधर की बातें कर करके संसार को सच्चा बनाना और अपने को पापी पुण्यात्मा भला बुरा इसका उसका ऐसे झंझटों में क्यों डालो? बात करे तो भी सारभूत करनी चाहिए, कट टू कट, ज्यादा बातें लंबी नहीं करनी चाहिए। जो लंबी बात करता है तो उसको सुनने वाले पसंद नहीं करते, जो लंबी बात करने वाले की बात कट भी जाती और सुनने वाले के हृदय से कीमत भी घट जाती, बात को खींचते, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था कि आप तो ये बात सीधी कर, इसलिए वैसलिए कईयों की ऐसी आदत होती। समय ऐसा फालतू नहीं गवाए, सत्संग में भी सार बात आए, लंबा छोड़ा मैंने कई बार बताया था, नए होंगे तो बताता हूं, ये गुलाब का फूल है, अभी मैंने बोलकर मेरा समय खराब किया, तुम्हारा भी समय खराब किया, ये गुलाब का फूल है तो तुम जानते हो इसमें क्या हो गया, लेकिन मैं कहूं ये गुलाब का फूल है, ये त्रिदोष नाशक है, इसमें तीन गुनी जितने फूल उतने तीन गुनी शक्कर मिला के धूप में रखना 40 दिन तक चंद्रमा की चांदनी में, तो ये गुलकंद बनता है, थोड़ा गुलकंद खाने से गर्मी संबंधी बीमारियां शांत होती, तब तो ठीक है, इससे भी ऊंचा है कि ये गुलाब है, इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत है, और पांच भूतों का आधार प्रकृति है, और प्रकृति का आधार परमात्मा है, ये परमात्मा के आधार से बना, उसके आधार से दिख रहा है, और उसी आधार में ये विलय होगा। तो मैंने तुम्हारे को बताया तो मेरा समय सार्थक हुआ, तुम्हारी ज्ञान वृद्धि हुई, ये गुलाब है बड़ा अच्छा है, बड़ा फलाना है, तो मेरा अपना आसक्ति के कारण अपनी जवान खराब हुई और तुम्हारा समय खराब हुआ, वस्तुओं का प्रशंसा करके उसमें फंसो मत, आसक्ति करके फंसो मत, द्वेष करके उलझो मत, लेकिन वस्तु के मूल में वस्तुओं के स्वामी को देखकर मन मना भवा, मेरे मन वाला बन, मेरे में बुद्धि लगाने वाला बन, मेरे को खोजने वाला बन, आजकल ये है एयरलाइंस का ही हो गया तो हो गया मजार में ऐसा हो गया फलाने, अरे होता है संसार है, कितना कितना दिमाग में भर हुआ। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पढ़ते थे तो एक मास्टर आता और वल्लभ भाई नींद कर लेते, मास्टर बड़ा चिढ़ता। ठीक होते, एक दिन मास्टर ने डांट के पूछा कि जब मैं आता हूं तभी तुमको नींद आती, बाकी के पीरियड में नहीं आती। बोले साहब आप इधर उधर की बातें करते, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये वो अंदर भर न जाए इसलिए मैं सो लेता हूं, ये कचरा भर भर के अपना दिमाग भर दूंगा तो अच्छी बात कहां रखूंगा। सुना तभी तो सरदार में विद्यार्थी जीवन में बोले इधर उधर की, आज अखबार में ये आया फलानी जगह ये था, आप तो पढ़ाने की बात तो थोड़ी सी करते, बाकी जर्नल नॉलेज करके कचरा भर देते। तो फिर अच्छी बात कहां रखूंगा, इसलिए मैं सो लेता हूं। ऐसे आप भी फालतू बातें मत भरो, ब्रह्म ज्ञान की बात कहां रखोगे। नारायण, ईश्वर प्राप्ति करनी हो तो 3 घंटे ओमकार का जप, 3 घंटे भगवत ध्यान और 3 घंटे ऐसा शास्त्र विचार, 3 घंटे सत्पुरुषों का सेवा, ईश्वर प्राप्ति शीघ्र हो जाए। भगवत चिंतन बड़ी आकर्षणीय शक्ति है, भगवान की चिंतन सारे विश्व को आकर्षित करने की जो सत्ता है वो भगवान की है। सब भागे जा रहे हैं, कहां भागे जा रहे हैं, आकर्षित हुए जा रहे हैं कहां, सुख के तरफ। भगवान सुख स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, थकते तो जड़ता में आ जाते, फिर जगते हो भागा दौड़ी करते तो चेतन में ही है, आकर्षण होता है ना, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, ये ज्ञान है तभी तो दूसरे तरफ ज्ञान का विस्तार होता है और आनंद की मांग है सुख की। तो भगवान चेतन है, ज्ञान स्वरूप और सुख रूप है। नारायण 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 नारायण, विवेक जगे, विवेक जगा, आखिर ये मिल गया तो क्या, इतना हो गया तो क्या। जब तक ईश्वर नहीं मिला, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक कितना भी मिला आखिर क्या। ईश्वर के सिवाय कहीं भी कुछ मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर में मन लगाना कठिन नहीं है, जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे सत्पुरुषों का सत्संग सानिध्य मिलना कठिन। अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, यहां प्रेयर करो, यहां प्रेयर करो, प्रार्थना करने के बाद भी क्या क्या करके सुखी होने के लिए भटकना पड़ता है, तो प्रार्थना का फल क्या। प्रार्थना तो ये जैसे गांधी जी कहते हैं, अपने लिए नहीं देश की भलाई की प्रार्थना उनकी, गांधी जी की, कस्तूरबा की, उदालक ऋषि की प्रार्थना। और भी जो सात्विक है जिनका खान पान पवित्र है, प्रार्थना तो सुनो, ऊंची ऊंची प्रार्थना यह के पास मैं सुखी हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, ऐसा नहीं। मैं क्या हूं ये पता चले, अथवा आप कैसे मिले इसकी आप ही दे, आप में रुचि हो जाए, आप में प्रीति हो जाए। ये संसार बदलने वाला है, देखते देखते बदल रहा है, मिट रहा है, स्वप्न हो रहा है, लेकिन उसको जानने वाला यह देव मैं हूं। उस पर संसार का पर्दा लगा है, मैं माई हूं, भाई हूं, अग्रवाल हूं, पंजाबी हूं, शर्मा हूं, ये सब अहम के कवर है। ये सब हट जाए और मैं वास्तविक में जो हूं उस प्रसाद में जात पात अहंकार में होती है, आत्मा में जाति नहीं होती। मैं हूं, मैं तो शुद्ध है, हूं तो शुद्ध है, यह वह और मैं, तो यह भी दिखेगा मैं से, वह भी दिखेगा मैं से, वह और यह आके चला जाएगा, लेकिन मैं मुझसे कभी नहीं जाता। यह तो कितनी बार आया, वह भी कितनी बार आया, लेकिन मैं कभी आया कभी गया क्या? कि मैं के ऊपर अहंकार की परत पड़ी है, मैं दुखी। जैसे सैटेलाइट में कितने प्रोग्राम जाते, ऐसे मैं ऐसा सैटेलाइट है कई प्रोग्राम्स के सिर पर भरते, फिर जब जैसा निकालना चाहे ऐसा निकलता रहता है। सैटेलाइट की गहराई में तो विद्युत काम करती है, ऐसे मैं के गहराई में तो परमात्मा चेतना है, वही सार है। विद्युत के बिना सैटेलाइट सिस्टम नहीं काम करती होगी, करती होगी क्या? मेरे को नहीं लगता, हालांकि मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन चाहिए। ऐसे चेतन के सिवाय मैं नहीं उठेगा, उसके ऊपर मैं चेतन, फिर मैं ब्राह्मण ये अहम आ गया, मैं गरीब ये भी अहम है, मैं दुखी ये भी अहम है, मैं बहुत जानता हूं ये भी अहम है, मैं नहीं जानता हूं ये भी अहम है, मैं पापी हूं ये भी अहम है, पुण्यात्मा हूं ये भी अहम है, मैं क्या करूं ये भी अहम है। सैटेलाइट में कितने प्रोग्राम हो जाते हैं, इंटरनेट में कितना कितना लोग डाल देते, भरते जाओ भरते जाओ। ऐसे ही चैतन्य की सत्ता में जो जो संस्कार डाल दो, फिर एक जन्म पूरा हो कई जन्म तक घूमता रहे। अब क्या करें, हटाओ उस सारे प्रोग्राम को, शुद्ध रूप से देख लो। तो वैसा कल्पना नहीं करना कि चलो ऐसा गोला है और प्रोग्राम, फिर उस झंझट में मत पड़ना, तो फिर नई गाड़ी नई पटरियां बनाएगी। आप कैसे मिले आप ही जानते महाराज, हम नहीं जानते कि आपको हम कैसे खोजे। सो जाने जासुदेह जनाई, वो ही जान सकता है जिसको आप जताते हैं। सो जाने जासुदेव जनाही, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाए। आपको वही जान सकता है जिसको आप जताते, जिसको आप अपना आपा जताते, वो आप मैं हो जाता है। तो महाराज हमें आपकी प्रीति दीजिए, आपकी भक्ति दीजिए, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। हम तो आपके वास्तविक स्वरूप की सत्ता लेकर उसके ऊपर मैं के कवर पर न जाने क्या क्या खींचे जा रहे हैं। मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं, ऐसा करते करते मिटते भी जाते और नए संस्कार अंकित भी होते जाते, उसका कोई अंत नहीं होता। ये खाली आपके चैतन्य स्वभाव पर हमारा जो अहम रूपी मैं है वो हटकर असली मैं की मुलाकात। असली मैं में तो हमारा नकली मैं घुल मिल जाए, जैसे समुद्र असलियत है लेकिन मैं तरंग हूं। अरे तू पानी के बिना तरंग कैसे, ऐसे तुम्हारी असली मैं के बिना मेरी मैं कैसे महाराज। मेरी मैं मुझे फंसाती, मेरी मैं तुझ में डूबे महाराज, मेरी मैं तुझ में डूब जाए जैसे लहर सागर में डूबे, ऐसी मेरी मैं तुझ में डूब जाए। और फिर ये तू और ये मैं ना रहे। हे नाथ, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, भगवान के नाम का उच्चारण सुमरण। जब उस चैतन्य में जगत जगत के संस्कार डालते तो अहम हो जाता है, प्रीति के संस्कार पड़ते तो भक्ति हो जाती, और असली मैं को खोजते खोजते नकली मैं विलय होता है तो ज्ञान हो जाता है। अर्थात कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और संसार का फसन मार्ग। अगर संसार की चीजों को पाकर आप कुछ बनना चाहते तो ये फंसने का मार्ग है। उन चीजों का सदुपयोग करके भगवान में आगे बढ़ना चाहते तो कर्म योग है, उसमें प्रीति करके आगे बढ़ते तो भक्ति योग है। लेकिन मैं क्या हूं या भगवान आप क्या हैं, ऐसे तड़प लगाकर खोजते तो ज्ञान योग है। तो चार अवस्था हो गई, चौथी अवस्था में तो सारे फंसे। मैं गरीब, मैं अमीर, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं वकील, मैं डॉक्टर, इसमें तो सभी लोग फंसे अपने, कोई कोई निकलता है। कर्म करते, भक्ति करते, ज्ञान करते, रात को गहरी नींद में देखो हम शांत होता है तो कैसी थकान मिटती। मैं डॉक्टर हूं याद करके आप नींद नहीं कर सकते। मैं धनवान हूं अथवा धन का हीरे जवाहरात की मुट्ठी भर पकड़ के आप नींद नहीं कर सकते। कितने भी कीमती हो, करोड़ों रुपए के हीरे हम पकड़ रखो चार दिन सो मत, हो जाएगा। तो ये संसार तो छुप जाता है लेकिन अपना आपा नहीं छूटता, नींद में भी रहता है, तभी तो खून का प्रवाह चलता है, श्वास चलता है। तो एक होती जागृत अवस्था, अभी जो जागृत अवस्था है उसमें भी भगवान की सत्ता है लेकिन नकली मैं ढक के बैठा है। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, मैं सत्संग कर रहा हूं, मुझे जाना है आना है, इस प्रकार का कवर है। स्वप्न आया तो हिता नाम की नाड़ी में जो संस्कार लेके ऐसा स्वप्न दिखा, तो जागृत के समय जो दिखा वो स्वप्ने में नहीं है, लेकिन जो जागृत में जागृत देखता था वही स्वप्न देख रहा है। फिर गहरी नींद में न स्वप्न है न जागृत है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वह असली मैं चैतन्य है, लेकिन ये संस्कारों का पर्दा पड़ा है। जब सत्संग साधन करते गुरु कृपा की कुंजी लगती, पर्दा हटता है तो तुरीय अवस्था आती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, लेकिन फिर भी जो नहीं जाता है वो है असली मैं। जागृत को जो जानता है, स्वप्ने को जो जानता है, गहरी नींद को जो जानता है, न जानने को भी जो जान रहा है मैं कुछ नहीं जानता हूं, उसको कौन जानता है, वो है तुरीय प्रतीत परमात्मा। इतना सरल है कि हे राम जी, फूल पत्ता और टहनी मसलने में परिश्रम, अपने आत्मा को जानने में क्या परिश्रम, ऐसा सरल है। लेकिन नकली मैं का इतना प्रोग्राम जमा हो गया है कि वो असली मैं ढक गया। जब भी सोचेंगे जरा ये हो जाए, बेटे ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे, ऐसा हो जाए, अरे फिर क्या होगा, जरा ऐसा हो जाए, जरा ऐसा हो जाए, टेम्परेरी ऐसा वैसा करके ये नकली है, नकली मैं बना रहना चाहता है। अनल हक वो मैं हूं, जो असली है वो मैं हूं, नकली शरीर मन बुद्धि में नहीं हूं, दुख सुख में नहीं हूं, गरीब अमीर में नहीं हूं, ये नकली मैं है, गरीब अमीर दुखी सुखी माई भाई शर्मा भी नकली मैं और बनिया भी नकली मैं। लेकिन शर्मा और बनिया के भाव आके चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता वो कौन है, वो असली वही आत्मदेव है, ऐसा नहीं कहीं दूर है, उसमें प्रीति हो, उसकी स्मृति हो, उसके चिंतन ध्यान में। अभी तो सुना इससे 10 गुना समय मनन करना चाहिए और 1000 गुना समय इसी में रम जाना चाहिए तो साक्षात्कार होता। सुनने से इतना लाभ होता है तो मनन भी करते हैं, नित्य ध्यासन होता है, इसीलिए हम एकांत में रहते हैं और वो एकांत में रहने का स्वभाव अभी भी है। ये तो आप आते तो जरा मिलने को आता हूं, नहीं तो मैं तो दिन रात उसी में रहूं तो कोई टोटा नहीं। शांत आत्मा, सुखद आत्मा, जितना धर्म के लिए करेंगे, अपनी संस्कृति के लिए करेंगे, उतना नकली मैं ढीला होगा, नकली मैं संकीर्ण होता है, धर्म और संस्कृति विशाल होती है, जितना धर्म के संस्कृति के लिए करेंगे उतना विस्तार होगा चित्त का। अपने परिवार, अपने शरीर के लिए या परिवार के लिए करे तो सीमित जीवन होगा, बहुतों के लिए होता तो जीवन विशाल हो जाएगा, और फिर परमात्मा के लिए हो तो फिर जीवन परमात्मामय हो जाएगा। जरा बेटे का करूं, जरा इसका करूं, असली चीज पाने के लिए नकली का आकर्षण छोड़ना पड़ता है। नकली कवर रख के असली चीज नहीं पा सकते, हो होके सब बदलने वाले, जैसे समुद्र में नित्य उथल पाथल हो रहे, इसे सारे ब्रह्मा तैरा उतरा रहे, लेकिन हो होके सब बदलने वाले, जैसे समुद्र में नित्य उथल पाथल हो रहे, इसे सारे ब्रह्मा तैरा उतरा रहे, जैसे सरोवर के पानी से कल्पना करो, बर्फ के अनंत पीस, बर्फ के अनंत टुकड़े उसी सरोवर के पानी से बने और उसी में तैरा उतरा रहे, ऐसे ही असली मैं में सारे नकली नकली में तैरा उतरा रहे। लेकिन बने सब असली से ही है, ये बर्फ के टुकड़े जो है वो नकली है, पानी असली है, बर्फ की आकृति पानी से अलग दिखती है अपने को, जो अलगा हुए नकली है, तत्व रूप से जो पानी है वो ही बर्फ है और वो ही बाष्प है, वो ही गंगा जी है, वो ही यमुना जी है, ऐसे असली में देखो तो सब वही है, सब वासुदेव है। बोले सब भगवान है, तो इस ढंग से तत्व रूप से सब भगवान है, जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो न तो बार बार ही सब वासुदेव है, तो जहां पहुंचना है उसका इरादा पहले से करो, बड़ी कल्याण में इस भावना है। वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ, पक्षी की चहचहाट, हाथी का चिखाड़ना, घोड़े का हुंकारना, सब तेरी लीला है, सब तू ही है, सब तू ही। ऐसा चिंतन करो तो भी काम हो जाए। आपे लाडा, लाडा भी तू ही बना है, लाडी भी तू ही बना है, मावा दुला दुलन तू ही लीला कर। बड़ा आनंद रहेगा, जल्दी से भगवत भाव हो जाएगा। तू ही तू, तू ही तू, कीड़ी में तू छोटा, हाथी में बड़ा, बच्चा बन के उमा उमा करता, माँ बन के चुप कराता, भिखारी बनकर भीख मांगता, दाता बनकर देता है, चोर बनकर चुराता है और सिपाही बनकर भागता है। ऐ तेरे यार, तेरे को हम समझ गए। ये लोग ऐसे आ रहे हैं आजकल तो, हे पढ़ो।
हे राम जी, जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मच्छर रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मच्छर रहते हैं, और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पर्वत उसको रोकते हैं।
सुबह जल्दी स्नान करना, जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, स्मृति करना, ये सब शुभ गुण है। ये जीव को ईश्वर प्राप्ति की योग्यता देने में मदद करते हैं। ये पुण्य कर्म है, सात्विक है। निंदा करना, देर से उठना, अरे बोले इसने उसको मार दिया, आ गया तमस आया तो मार दिया, मुक्का मार दिया, उसने उसको ऐसा कर दिया, तो तमस वृत्ति आती है, कभी रजस आती है, कभी सात्विक आती है। ये तो सभी में होता है, तमस रजस सात्विक। तो स्नान दान पुण्य करते तो सात्विक ज्यादा रहता है। जरा सत्कर्म से सत्व बढ़ता है। ओ जगत देखते देखते बीत रहा है, तो बीते हुए को याद करके शोक मनाना, आने वाले का भय करके भयभीत होना, ये साधारण व्यक्तियों का स्वभाव होता है। जो तुम्हारे सरीखे राम जी, तुम्हारे सरीखे जो है, वो बीते हुए का शोक नहीं करते और आने वाले का भय नहीं करते, वर्तमान में यथा योग्य व्यवहार करते हैं, लेकिन कर्तृत्व के बोझ से रहित होते हैं। न चाहने पर भी सुख आता है, यश आता है, ऐसे न चाहने पर भी दुख या अपयश या रोग, ये सब प्रारब्ध और प्रकृति के प्रवाह में आता रहता है। मूढ़ मनुष्य इसमें सतबुद्धि करके या तो इतरा जाते या तो घबरा जाते, लेकिन ज्ञानवान न अहंकार करके इतराते हैं, न परिस्थितियों से डर कर घबरा जाते हैं, प्रतीत प्रवाह में यथा योग्य करते। तुम सदा ज्ञान की दृष्टि लो, हे राम जी सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन अंदर से शिला किनाई रहो। लेते देते खाते रहो, हम मना नहीं करते, लेकिन अहंता मत करो। लेने देने खाने करने कराने की अहंता मत करो। जो जो जिसमें अहंता करता है और ममता करता है उसी में फंसता है। तो अहंता करनी हो तो अपने वास्तविक शुद्ध आत्मा में करो कि मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं। अथवा अहंता करो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, मैं फलाना हूं और फलानी वस्तु मेरी है, ये अहंकार है, ये जीव को दुख देता है। लेकिन मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये प्रेमा भक्ति को, और वास्तविक मैं क्या हूं और भगवान क्या है उसको खोजे तो ये ब्रह्म ज्ञान हुआ। भगवान के निमित्त दूसरों की यथा योग्य शास्त्र सम्मत सेवा करे अपने बल के अनुसार, ये कर्म योग हो गया। कर्म योग से अपने आत्मदेव को जान लो, भक्ति योग से अपने आत्मदेव को जान लो, अथवा ज्ञान योग से जान लो, अथवा तीनों साधन थोड़े थोड़े करके सतपुरुष की कृपा से जान लो, अथवा ये तीनों साधन नहीं है लेकिन कोई ज्ञानवान है, गीता में आता है, और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार उनमें श्रद्धा भक्ति करके उस आत्मदेव की यात्रा करो तो भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान पालो। दुनवी ज्ञान तो पेट भरने तक का है, और कितना भी पेट भरने के साधन हो, हृदय को भगवत रस से नहीं भरा, भगवत ज्ञान से नहीं भरा, भगवत शांति से नहीं भरा तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। पेट तो कीट पतंग भी पाल रहे हैं, कुत्ते और घोड़े, गधे और मेंढक और चूहे, गिलहरियां भी पेट भर लेती और बच्चे कर लेती, ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने जीवन को ऐसा संवारो कि किसी भी परिस्थिति का प्रभाव चित्त में ना पड़े और चैतन्य स्फुराता रहे, उसकी सत्यता दिखती रहे। मरने से डरो नहीं, किसी को डराओ नहीं। आप भी ज्ञान बढ़ाओ और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाओ। आप भी प्रसन्न रहो, सुखी रहो, दूसरों को भी सुख दो, ये आपका असली स्वभाव है। मरने से डरना डराना ये नकली स्वभाव है। नकली शरीर को मैं मानकर डरना डराना होता है। नकली शरीर में जड़ता होती है, नकली शरीर में दुख है। कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिर भी कभी न कभी कोई न कोई खांसी दम्मा बीमारी ये वो, अंत में जलाओ और मरो। तो ये तुम्हारा असली स्वभाव नहीं है। असली स्वभाव तुम्हारा सत्य है, असली स्वभाव तुम्हारा चेतन है, असली स्वभाव तुम्हारा आनंद है। तो अपने स्वभाव में स्थित होकर यथा योग्य कर्म करो। अपने शुद्ध स्वभाव में नकली व्यवहार को महत्व न दो। जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करता है, हरिश्चंद्र बनता है और थोड़ी देर के बाद चपरासी बनकर आता है, फिर जाकर वेश बदलकर तीसरा पार्ट अदा करता है, तभी भी उसको पता है कि मैं वही हूं। इस प्रकार प्रारब्ध वेग से जो कर्म आ जाए, पत्नी के आगे पति, पिता के आगे पुत्र, गुरु के आगे शिष्य, शिष्य के आगे गुरु का व्यवहार करो, लेकिन अंदर से जानो कि यह सब माया मात्र है, ये संसार का एक खिलवाड़ मात्र है। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा मेरा जो कत्यू है। ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम ओम। तम नमामि हरिम परम। जो परम पुरुष है, जो पाप ताप और अज्ञानता हर लेता है, मैं उसे नमस्कार करता हूं। तम नमामि हरिम परम। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और उसमें भी आखिरी सिद्धांत की बात कहते हुए सिर पर हाथ रख दिया कि राजन, तुम्हारे आगे जो मैंने इतिहास के और इन सूर वीर राजाओं की और रासलीला, हास्य रस, विचार रस, भक्ति रस, ये सब जो चर्चाएं की, ये सब तुम्हारे मन रूपी पक्षी को शब्दों के जाल में फंसाने के लिए। सार बात यही है कि तुम इस दुर्मति का त्याग करो कि ये शरीर मैं हूं और मैं मर जाऊंगा। तुम शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहोगे, लेकिन तुम चैतन्य हो। अहम ब्रह्म परम धाम, ये भागवत में आता है। सिर पर हाथ रखा, तुम ये निर्णय करो, अहम ब्रह्म परम धाम परमानंदम परम पदम, मैं ही आत्मा ब्रह्म हूं। यहाँ जो चम चम चमक रहा है, स्फुरा रहा है चैतन्य, वही सबके हृदय में और सारे ब्रह्मांड में व्याप रहा है। अहम ब्रह्म परम धाम परमानंद परम पदम, परम पद में ही हूं। मरने वाला शरीर अथवा बदलने वाला मन या बुद्धि में नहीं हूं, मैं उसको जानने वाला। इस प्रकार अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो पुत्र। और परीक्षित का अज्ञान मिट गया। सात्विक जीवन पहले ही था, फिर मौत सामने है, 7 दिन में तो मरना है। 7 दिन तक उस महाबुद्धिमान राजा परीक्षित ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कथा सुने और उसी विचार में पड़ा रहा। ज्ञान निष्ठा तो होनी है, 7 दिन के अंदर साक्षात्कार हो, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष। भगवान के दर्शन हो जाए फिर भी साक्षात्कार करना बाकी रह जाता है, और साक्षात्कार कर लिया तो भगवान जी के दर्शन की भगवान को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं। भगवान जैसे भगवान है वो साक्षात सच्चित आनंद में टिके। ओम ओम। ओम ओम माधुर्य। ओम ओम सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है अकाल पुरुष, वही शिव है कल्याण स्वरूप, और उसी का सौंदर्य विश्व में व्याप रहा है। ये फूलों का आकर्षण और सौंदर्य किसकी सत्ता से? सत्यम शिवम सुंदरम। इस ढांचे में जो ज्ञान है, प्रेम है, समझ है, खुशी है, वो कहां से है? सत्यम शिवम सुंदरम। जहां जहां विशेषता दिखे वहां उसी का निखार है। जो भी सुखद है, प्यारा है, सत्य है। बोले कुछ लोग तो बोलते हैं कि परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है और संसार झूठा है, मिथ्या है। और कुछ लोग बोलते संसार सत्य है, तो कौन सी बात माननी चाहिए? दोनों बात सही है। जो बोलते संसार सत्य है उनके लिए संसार सत्य है, और जो बोलते संसार मिथ्या है या झूठा है, आत्मा परमात्मा सत्य है, उनके लिए आत्मा परमात्मा सत्य है, संसार झूठा है। तो झूठे सुखों में आकर्षित मत हो, झूठे दुखों में बहो मत, झूठे आकर्षणों में रहो नहीं, अपने सत स्वभाव में आते आते आत्मज्ञान में आ गए। लेकिन फिर वो झूठा संसार आत्मा में सत में आ गए। सत में आ जाओगे तो फिर पता चलेगा कि तत्व रूप से सब सत ही सत है। वो तो पैदा होता है, दिखता है, बदलता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। जैसे ये फूल है, दिखे हैं, तुमको लगेगा नष्ट हो गया, लेकिन इसके कण जहां से आए वहां चले जाएंगे। जल जली अंश में जाएगा, गंध गंध अंश में जाएंगे। तो इस प्रकार कोई चीज नष्ट नहीं होती। बालू का एक दाना भी नष्ट नहीं कर सकते, उसको पाउडर बनाकर आंखों से उझल कर सकते हैं, लेकिन वातावरण में रहेगा। ये उसकी सत्ता है, उसके घनीभूत में चेतनता भी छुपी, आनंद भी छुपा है। तो ज्ञान होने के बाद सारा जगत सत स्वरूप मान लो अथवा ब्रह्म रूप मान लो, अथवा जगत परिवर्तित होता है, सपना है, तो अपने को व्याप्त ब्रह्म के रूप में देख लो। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नीचे के भाव में रह जाते हैं। आप ब्रह्म भाव में आ गए, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा तो अब यहां से अपन जाए तो बाय रोड जाना हो तो गली गलियारे ये वो सड़क से ही जाना पड़ेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर को गलियों की सड़कें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ऊपर से चला जाएगा। किसी के दुकान की छत हो, किसी के कोठी की छत हो, चाहे सड़क का गटर हो, चाहे सड़क खुद हो, कोई उसके ऊपर लागू नहीं पड़ेगा आरटीओ का नियम, धरती के आरटीओ नियम। ऐसे ही आप अपने सत स्वभाव में आ गए तो प्रकृति जनित पुण्य पाप सुख दुख जन्म मरण नहीं लगेगा। मुक्त आत्मा हो जाओगे, महान आत्मा हो जाए, तृप्त आत्मा हो जाओगे। अभी तो हे नाक तू सुख दे परफ्यूम का, हे जीभ तू चटोरेपन का सुख दे, हे कान तू वाहवाही का सुख दे, हे त्वचा तू स्पर्श का सुख दे, हे काम इंद्री गंदी इंद्री तू संभोग का सुख दे। भिख मंगो की नहीं, इन गंदी इंद्रियों के द्वारा सुख के पीछे जीव बेचारा दुखी हो जाता है। अपने सुख स्वभाव में आ जाएगा फिर खाएगा लेगा देगा, लेकिन सुख भीतर नहीं भरेगा, अंदर से सुख बाहर बांटेगा, क्योंकि सुख का मूल स्तोत्र सत्यम शिवम सुंदरम है। वो उसको पता चल गया गुरु कृपा से। साधन भजन करते करते जितना ईमानदारी से साधन करेगा उतना गुरु के प्रति आदर होगा, जितना सच्चाई से भगवान की चाह होगी उतना ही संत के लिए श्रद्धा बनेगी। भगवान के लिए चाह नहीं है और स्वभाव में क्रूरता है तो संत ब्रह्मा जी जैसे मिले तो भी आदमी फायदा नहीं ले सकता। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सब, ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिले।